ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीबादरायणी उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकः विच्छिरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आठवें श्लोक की आवृत्ति कर रही हूँ। तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानः न निवर्तन्त मोहितः। भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकः विच्छिरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री बादरायणी उवाच। बादरायण भगवान व्यासदेव उनके पुत्र उवाच बोले भगवान श्री कृष्ण अपि भी ता रात्रि है उन रात्रियों को शरदोत्फुल्ल मल्लिका जिनमें शरद काल के कारण मल्लिका के फूल खिले थे, मालती के फूल खिले थे, वीक्षा उन रात्रियों को देखकर रंतु रमण करने की विहार करने की मनश्चक्रे संकल्प किए योग माया अपनी अचिंत स्वरूप शक्ति उपाश्रितः का निकट से आश्रय लेकर आज रास पूर्णिमा है। आज के रात्रि में भगवान ने रास किया था इस वृंदावन में, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। रासलीला की कथा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध के 5 अध्यायों में दी गई है। इसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है वैष्णव समाज में, और इसे श्रीमद् भागवत का पंच प्राण कहा गया है। 10 प्राण हैं मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए, जिसमें मुख्य हैं 5। 5 प्राण जैसे शरीर में मुख्य हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम में ये 5 अध्याय सर्वश्रेष्ठ अध्याय, इन्हें पंच प्राण कहा गया है श्रीमद् भागवतम का। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर महान ऋषियों की सभा में बोल रहे हैं, और वे सब ऋषि मुनि एकाग्र चित्त से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुन रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े लोग हैं जैसे भगवान वेदव्यास देव स्वयं, श्रीमद् भागवतम के रचयिता वेदव्यास देव बैठे हैं सुनने के लिए, और भगवान नारद, भगवान परशुराम, वशिष्ठ मुनि इत्यादि, मैत्रेय जी, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और महाराज परीक्षित मुख्य श्रोता हैं जो अब शरीर छोड़ने वाले हैं, लगभग 3-4 दिन के बाद ही वे शरीर छोड़ देंगे। तो वे अपने स्वामी प्रियतम भगवान की लीला कथा को सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसके पहले जग पत्नियों पर कृपा का वर्णन किए और गोवर्धन धारण की लीला कहे, और अब वे यहां से प्रारंभ करते हैं। भगवान अपि, भगवान भी, इसका अर्थ यह है कि जथा गोप्य तथा भगवान अपि। गोपियों की लालसा तो बहुत काल से थी, कब श्याम सुंदर के साथ वृंदावन में विहार करेंगे, उनकी सुदुर्लभ है परम सुंदर श्री अंगों का स्पर्श, उनके साथ नृत्य करना और उनका मधुर शब्द सुनना, उनके साथ विविध प्रकार की लीलाएं करना, इसकी तो इच्छा की थी। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, जिस दिन भगवान ने चीर हरण किया था, जो 1 साल पहले की लीला थी, 1 वर्ष पहले की गई लीला, की गई प्रतिश्रुति को भगवान अब पूरा कर, हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो श्री भगवान ने गोपियों की इच्छा को देख करके कहा, चिरहरण के दिन महिमा रंग से छपा, हे प्रियाओं, आगामी रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा वृंदावन में विहार होगा। श्याम सुंदर का यह वाक्य ही श्री गोपी जनों के जीवित रहने का अवलंबन हो गया कि प्रियतम श्याम सुंदर हमें मिलेंगे और स्वच्छंद वृंदावन में विविध विहार करेंगे। तो उन रात्रियों की वो प्रतीक्षा करती रहती थी। तो सुखदेव गोस्वामी अब यहां से प्रारंभ करें, भगवान अपि, जथा गोप्य तथा भगवान अपि। जैसे गोपियों की इच्छा थी, मनोरथ था, उत्कट लालसा थी भगवान के साथ वृंदावन में विहार करने की, तो अब भगवान की भी इच्छा हो गई। इच्छा तो श्याम सुंदर की बहुत काल से थी, यह मनह चक्र भगवान ने मन का निर्माण किया, इसका मतलब है दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें विहार करना है। जैसे गोपियों की इच्छा थी, वैसे भगवान की भी इच्छा हो गई। भगवान अभी रंतुम मनश्चक्र, भगवान भी रमण करने की इच्छा के मनश्चक्र संकल्प कर लिए। बहुत काल से श्याम सुंदर अपने इच्छा को, अपनी उत्कट लालसा को दबाए हुए थे लोक भय से। यद्यपि गोपियों का प्रकट हो जाता था, वे श्याम सुंदर से इधर उधर मिलती थी, जमुना जी के तट पर, गिरिराज जी की घाटियों में, या पुष्प चयन में, जहां तहां, या दही बेचने में मिलती थी, और वो व्याकुल थी सर्वस्व छोड़ करके श्याम सुंदर के साथ होने के लिए। उनका मन तो बहुत पहले से ही मुक्त हो चुका था, घर के काम धंधे में नहीं लगता था, शरीर के स्वभाव से और योग माया के द्वारा वे संचालित थी, इसीलिए घर का काम कर रही थी, लेकिन उनका मन पूर्ण रूप से वृंदावन में श्याम सुंदर के साथ ही रमण करता रहता था। इस प्रकार जब उनकी इच्छा थी विहार करने की, तो श्याम सुंदर की भी इच्छा हुई। क्यों इच्छा हुई, इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी करते हैं। ता रात्रि वीक्ष्य, उन रात्रियों को श्याम सुंदर ने देखा। किन रात्रियों को, जिन रात्रियों की वे प्रतिश्रुति दिए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि आगामी रात्रियों में हे प्रियाओं मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। तो श्री भगवान का जो छिपा हुआ स्वरूप था वास्तव में प्रेम परवश है और श्री गोपीजनों के साथ विहार करने के लिए वे स्वयं ही बहुत व्याकुल रहते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना छिपा हुआ व्यवहार प्रकट कर दिया। वे देखे कैसी रात्रियां महिमा वंश फक छपा भगवान अपि रंतु मनस चक्र भगवान स्तु जातानुरागत्येपि धैर्येण समय विशेषण प्रतीक्षमाणो रंतु न मनश्चक्र संप्रति भगवान अपि मनश्चक्र भगवान भी संकल्प कर लिए। भगवान ने कहा था आगामी रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा, तुम रात्रियों को देखा। कथम भूता रात्रि शरदुत फुल्ल मल्लिका, एक तो शरद काल की रात्रियां थी और भगवान ने देखा एक ही रात्रि के भीतर अनेक रात्रियों का समावेश हुआ अथवा अन्य रात्रियों को भी वो देख रहे थे। शरदा हेतुना उच्च फुल्ला विकसिता मल्लिका जासुता, शरद ऋतु के कारण बहुत अधिक विकसित हुई थी मल्लिका, मल्लिका के पुष्प जिन रात्रियों में फुल, इसलिए हिंदी में पुष्प को ही फूल कहते हैं। फूल फूल मतलब खिला हुआ पुष्प, खिला हुआ फूल मल्लिका विकसित मल्लिका के पुष्प अथवा शरद ऋतु में भी मल्लिका के पुष्प खिले हुए थे भगवान की लीला शक्ति के कारण। यह शारदोत फूल मल्लिका है, इसका अर्थ है शारदय ताह रात्रय, शारदीय रात्रि में मल्लिका के पुष्प खिले हुए थे। ता रात्रि वीक्ष्य इन रात्रियों को देखकर भगवान योग माया का आश्रय लिए। एक विशेष बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या भगवान हमेशा योग माया का आश्रय नहीं लिए रहते हैं? उनको स्वरूप शक्ति है, उनसे अलग हो नहीं सकती है, फिर भी योग माया उपाश्रित उपकार थे निकटे न या अधिक के न, खूब अधिक रूप से और निकट से योग माया का अपने स्वरूप शक्ति का आश्रय लिए। कभी कभी आचार्य लोग इसका अर्थ करते हैं श्री राधा रानी, भगवान श्री राधा रानी का आश्रय लिए। अनंत गोपी जनों के साथ विहार करना है तो उनकी कृपा चाहते थे, ये भी अर्थ किया गया। अनंत अनंत गोपिकाओं के साथ भगवान को विहार करना है तो बिल्कुल अपने स्वरूप में हैं, ऐसा नहीं है कि पहले स्वरूप में नहीं थे, लेकिन अपने ऐश्वर्य को पूर्ण प्रकट कर रहे हैं जो माधुर्य मंडित ऐश्वर्य है, क्योंकि अनंत गोपियों के साथ अनंत रूप प्रकट करना है, एक एक के साथ एक एक रूप, और उनके साथ विद्युत गति से भी तेज नृत्य करना है कई तरह से। इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप शक्ति को याद किया, संभाला, उसका आश्रय लिया, ये अर्थ कर रहे हैं। और ऐसा आश्रय लेकर के तब मनस रंतु मनस चक्र अपना प्रेम विस्तार अपना स्वरूप दान करने के लिए इच्छा किए। तो जब भगवान ने संकल्प किया तब क्या हुआ, उस समय भगवान की इच्छा से ही चंद्रोदय हो रहा है। तो दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी चंद्रमा के उदय का वर्णन किए हैं। तदो दुराज ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन संतमहि सचर्षणीनामुदगाच्युत मृजन् प्रियः प्रियायाइव दीर्घदर्शनः। तदा जदा रंतु मनश्चक तदैव तत्प्रीते उडुराज उडु नाम तारकाणाम राजा इति तथा चंद्र, उसी समय चंद्रमा उगे। ये चंद्रमा प्राकृत चंद्रमा नहीं है जो भगवान के रासलीला में दीपक का काम कर रहे थे, ये भगवान के स्वरूप शक्ति से उदित किए गए हैं। रात्रि में किसी को प्रकाश चाहिए लीला करने के लिए, तो काम करने के लिए, तो भगवान के इस रास लीला में सबसे पहले चंद्रमा का उदय हो रहा है। तदो डुराज सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि दीर्घ दर्शन प्रिय प्रियाया युवा, जैसे बहुत दिनों के बाद कोई प्रिय पति घर लौटा हो तो वह अपनी प्रिया के मुख पर कुमकुम लगाता है, उसका श्रृंगार करता है, उसे सुखी करता है, उसका मुख लाल हो जाता है कुमकुम लगाने से। तो इस प्रकार प्राची दिशा के मुख को लाल करता हुआ अपनी अरुणिमा से चंद्रमा उगे, ये दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत भी श्रृंगार रस के उपयुक्त दे रहे हैं। चंद्रमा जब उगता है तो पूर्व दिशा के मुख को लाल करता है, पहले लाल लाल उदित होता है और अरुण्य फैलता है, लालिमा फैलती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने गांव में हैं, उस समय रसौली में हैं, अपने गांव में जहां वे थे, जहां भी उनका गांव रहा होगा, गाय चराते हुए तो घूमते रहते थे, डेरा बदलता रहता था। तो एक गांव है जो बद्रीनाथ जी के द्वारा बसाया हुआ है, आज भी उसे रसौली गांव कहते हैं, जहां भगवान ने रास किया था, वो गांव प्रसिद्ध है अभी भी है। तो भगवान अपने घर से निकले और उगते हुए चंद्रमा को देखे और चंद्रमा के किरणों से लाल हो गया था वन प्रदेश, वृक्ष आदि सब लाल हो गए थे। और दूसरी विशेषता कह रहे हैं कि चंद्रमा उग करके मनुष्यों के ताप को हर लिए। शरद काल में भी बहुत ताप रहता है, लेकिन चंद्रमा जब उगते हैं तो शांति छा जाती है। सच्चर शनि नाम, चरसड़ी मनुष्यों को कहते हैं, मनुष्यों के और औषधियों के, फसलों के ताप को और ग्लानी को दूर करते हुए चंद्रमा उदित हुए, भगवान ने देखा। तो जब देखा तो तीसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, भगवान श्री कृष्ण ने कुमुदवान चंद्रमा को देखा। कुमुद को विकसित करता है, इसलिए चंद्रमा को कुमुदवान कहते हैं। तो कुमुदवंतम द्वितीय में भगवान ने देखा कुमुद को विकसित करने वाला चंद्रमा उदित है। रमान नाभव नवकुम कुमारों, ऐसा लाल लाल चंद्रमा दिखाई दे रहा था जैसे लगता था कि राधा रानी का मुख है, लाल लाल मुख। यह प्रश्न होता है कि राधा रानी का मुख तो पीत वर्ण का है, लाल के वर्ण किया जा रहा है। कभी कभी राधा रानी के मुख पर कुमकुम का लेप होता है अथवा ऐसे भी लालिमा रहती है पिंक, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के आनंद के आभा जैसा जिसकी आभा है थी, चंद्रमा को देख करके श्री भगवान को वृषभानुनंदिनी श्री राधा की याद आ रही है। यह चंद्रमा को देख करके गोपियों का स्मरण होने लगा, पहले से ही था लेकिन मुख को देख करके, चंद्रमा को देख करके मुख का विशेष स्मरण होने लगा। नवकुम कुमार, नए कुमकुम की तरह बिल्कुल लाल लाल चंद्रमा दिखाई दिया। शुरू में जब उग रहा था उसको भगवान देखे। और तत्कोमल गोभी रंजितम, वन जो था उसके कोमल गोभी किरणों से अभिरंजित था। कोमल किरण क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा जब शुरू में उगता है तो उसकी किरणें बहुत प्रकाश नहीं देती हैं, कम प्रकाश देती हैं, इसलिए उसको कोमल गोभी कहते हैं, कोमल किरण। चंद्रमा की कोमल किरणें फैल रही थी और भगवान अपने घर से बाहर निकल करके चत्वर में, अपने आंगन में या घर के बाहर चंद्रमा को देखे। चंद्रमा को देखे तो वहां से वे वन में यात्रा किए, घर से चले। वन में जा करके तब वहां उन्होंने बांसुरी बजाया। बलम चतत कोमल गोभीरंजितम जगौ कलम बाम दृष्णम मनोहरम। घर से बाहर एक ऊंचे स्थान से चंद्रमा को देखे और चंद्रमा को देखने के बाद रासलीला करने की इच्छा से वन में आए जमुना जी के तट पर। रासावली गांव भी जमुना जी के लगभग तट पर ही है। तो उस वन में आए, उसमें वन था, वहां आए और आकर के जगौ कलम बाम दृष्णम मनोहरम, उन्होंने बांसुरी पर तान छेड़ा, बांसुरी बजाया। किस लिए? गोपियों के आकर्षण के लिए। जत्र तत्र समस्त ब्रजमंडल में फैली हुई गोपियों को सुनाई देगा, अन्य किसी को नहीं। यह है भगवान का ऐश्वर्य, जिसको चाहते थे वही सुन सकती थी। कलम, कलम का अर्थ काम बीज, बहुत मधुर राग से भगवान ने गाना प्रारंभ किया। कैसे? वेणुना इति शेषम, बांसुरी में गाना चालू किया, वेणु में गीत गाना चालू किया। बहुत सुंदर गीत भगवान श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने जितना भी अभ्यास किया था, वेणु बजाने का शिक्षा लिया था, चाहे अपने से कहे जैसे, उसकी पराकाष्ठा अब यहां होने जा रही है। वेणु में जितनी शक्ति है, जितना अच्छा बजा सकते हैं उतना अच्छा भगवान ने बजाया, और समस्त ब्रज गोपियों को, ज्योतियों को सुनाई दे, उनको ही आकर्षित करने के लिए भगवान ने बांसुरी वादन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं जगौ कलम बाम दृश्याम मनोहरम। बाम दृश्याम, बामा का अर्थ होता है, उसका भी अर्थ मनोहर होता है, जिनका मुख है बहुत सुंदर होता है, या जिनकी आंखें बहुत सुंदर होती है। बाम दृश्याम मनोहरम, बाम दृश्याम ब्रज सुंदरियों के मन को हरने वाला, मन को लुब्ध करने वाला राग भगवान ने छेड़ा बांसुरी पर। प्रथम बार समस्त गोपियों को अपने पास खींच लेने के लिए भगवान ने राग गाया। अब तक वे सुनाते थे वेणु का गीत, जहां तहां छिप करके वे आती थी कभी कभी, ज्यादातर दूर से ही वेणु गीत का वर्णन करते थे, जैसा आप लोगों ने सुना, यहां कथा चल रही थी। लेकिन आज सबका आकर्षण करने के लिए, सबको अपने पास बुलाने के लिए, रास विहार के लिए भगवान बांसुरी पर ये दिव्य तान छेड़े, बजाना चालू किए। एकांत वन में चंद्रमा की किरणों को देख करके भगवान में भाव का उद्दीपन हुआ, और वन की शोभा देख करके, इसके द्वारा और भी सब समझ लेना चाहिए, सारी सामग्रियां, श्रृंगार रस को प्रदीप्त करने वाली जो भी सामग्रियां हैं वृंदावन में, वो सब उदित हो चुकी थी। उसको देखकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। जगौ कलम बाम दृश्याम मनोहरम, बाम दृश्याम मनोहरम, सुंदर नेत्रा गोपियों के ही मन को वो आकर्षित करने वाला था, और कोई सुना ही नहीं, आकर्षण करने का प्रश्न ही नहीं था, केवल भगवान की प्रियाएं, प्रियसियां जो उज्जवल भाव वाले हैं, उन्होंने ही केवल सुना। सुनने पर क्या दशा हुई, मैं तो बहुत संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं, बहुत विस्तार से टीकाएं लिखी गई हैं, समय भी जानते ही हैं बहुत कम रहता है, तुरंत बीत जाते हैं। तो भगवान ने जब बांसुरी बजाया तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सजत्रकान्तो जवलोलकुण्डलः। अन्ये तु तद्गीतम् न श्रुतवन्तः किंतु तेन तायव आकृष्टा इति तस्य शक्ति विशेषम दोतेन नाह निशम। गोपियों ने ही केवल सुना भगवान के गीत को, अन्य किसी ने नहीं सुना। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की इस शक्ति विशेष को भी सूचित कर रहे हैं, ये उनकी ऐसी शक्ति है जिसको चाहते हैं सुनना वही सुने, वही सुने। और दूसरी शक्ति ये है कि 84 कोष ब्रजमंडल में फैली हुई गोपियों को ये सुनाई दिया, और कहीं किसी को नहीं। रास जब होने लगेगा तो रास लीला में बजने वाले बेड़ू की ध्वनि, चूड़ियों की खनखनाहट, पैर के पायजेब की आवाज और कमर में बनी किंकड़ी की आवाज और गान, ये तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, लेकिन बुलाने का जो गीत है वो केवल गोपियों के कान तक ही गया, वही केवल सुने। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम तद गीतम निशम्य अनंगम श्री भगवत विषयम कामम प्राग वर्तमानम एव अधुना वर्धयति इति तथा तत् भगवद विषय मन्मथ उद्दीपकम इत्यर्थ। उस गीत के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनंग वर्धनम, जो अनंग को बढ़ाने वाला था। अनंग का ऐसे अर्थ प्राकृत होता है कामदेव, पर यह भगवत विषय काम को बढ़ाने वाला था। श्री कृष्ण के स्पर्श, श्री कृष्ण के श्रवण, श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण के साथ नृत्य आदि, इस लालसा को बढ़ा रहा था। अनंग वर्धनम का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कहीं भी किसी तरफ से काम वासना बढ़ रहे थे। भगवत विषय कामम, श्रीपा सनातन गोस्वामी जी कहते भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने वाला वह गीत था। उस गीत को सुनकर कृष्ण गृहित मानसः ब्रजस्त्रियः कृष्णेन परमाकर्षकेण पूर्वमेव गृहीतम् आकृष्टम् कृष्णे आविष्टम् वा मानसः मनः तदीयाशेषम् वा जयसंता। गोपियों का मन और मन में उठने वाली जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं कुछ भी, सब पहले से ही कृष्ण के में आविष्ट थे। मन कृष्ण में आविष्ट था, पहले से कृष्ण ने मन को हर लिया था। कृष्ण गृहित मानसा, कृष्ण ने पकड़ लिया था उनके मन को अपने संदर्भ से, अपने बांसुरी से, अपने मुस्कान से, अपनी लीलाओं से, चितवन से। पहले से ही गोपियों के मन को और मानसिक समस्त तरंगों को आविष्ट कर लिया था। गोपियां तो क्षण क्षण में यही मनोरथ करती थी कब श्री कृष्ण बुलाएंगे, कब श्याम सुंदर बुलाएंगे, और कब ये घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके हम उनके साथ हो जाएंगे, यही मनोरथ। वो तो प्रतीक्षा में थी, लालसा में थी, और उसी समय यद्यपि ये भिन्न भिन्न कार्यों में थी, मन से श्याम सुंदर के साथ ही थी, उसी समय श्याम सुंदर का यह बेड़ू गीत का आह्वान उन्हें मिला। नाम रख रह करके श्याम सुंदर बुला रहे थे, हे श्री राधे, हे ललिते, हे विशाखे और हे चंद्रावली, हे इस तरह से, हे रंग देवी, हे सुदेवी, हे चंपकलते इत्यादि कह करके बांसुरी में और गीत गा करके नाम ले लेकर के बुला रहे। जिनका चित्त पहले से ही कृष्ण गृहित है, पहले से ही एक एक क्षण जुग जैसा बीत रहा था श्याम सुंदर से मिलने के लिए, और इस पर श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का निमंत्रण जाए कि हे प्रियाओं, तुम आओ यहां, आओ, कितना सुंदर वृंदावन है, कितने सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये है वो है, ये हमारे बिहार के बिल्कुल उपयुक्त है, और यह बिल्कुल निवृत्त निर्जन स्थान है, यहां कोई भी ब्रजवासी नहीं जान आता है रात के समय। इस तरह से कई प्रकार से गीत गा रहे थे, वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे और गोपीजनों के सौंदर्य का, उनके वैदग्ध विलास आदि का। गीत में यह बात मुख्य थी कि मेरी आंखें तरस रही हैं, मेरी बाहें तरस रही हैं आलिंगन के लिए, और मैं बिल्कुल तरस रहा हूं, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ विहार करना, तो सबका नाम लेकर के और गीत गा करके बुला रहे थे। तो ऐसे पर क्यों नहीं गोपियां चारों तरफ से आ जाएंगे, पहले से ही प्रतीक्षा कर रही हैं, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण गृहित मानसा, कृष्ण उनका चित आविष्ट था, वे चल दी आजग्मु। आजग्मु का अर्थ है श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के पास खड़े होकर के मन से कथा कह रहे हैं, इसलिए आजग्मु कह रहे हैं। गोपियां आ गई, अर्थात उनको आते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी अपने भाव नेत्र से देख रहे हैं। आजग्मु यह भी कहते हैं जयु, जयु का अर्थ चली गई। तो उस समय वो गोपियों के साथ हैं जब इस शब्द का प्रयोग करते हो। आजग्मु यहां वे आ गई, श्री कृष्ण के वेणु नाद से आकृष्ट होकर के प्रेममयी गोपियां सब तरह से आ गई। अनुन्यम अलक्षितोद्यमा, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपने सखी को, अपने प्राण सखी को भी अपने उद्यम कृष्ण के पास जाने का की सूचना वे न दे। लेकिन यहां क्या हुआ, बांसुरी के गीत से इतना आकर्षण हुआ, इतना आकर्षण हुआ कि वे हत विवेक हो गई। उन्हें ये तो स्मरण ही नहीं रहा कि सखी को कहना है, चलने के लिए कहना है कि ललिता से कह दे, विशाखा से कह दे कि चलो चलो चलो। कोई भी सखी, न ललिता भी श्री राधा रानी से पूछने नहीं जा रही, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। ये सुनते ही ऐसा भाव का आवेश हुआ, यह अनोन्यम अलक्षितोद्यम है, कृष्ण के पास जाने का उद्यम लक्षित नहीं, कोई किसी को बताई नहीं, बताने का अनुसंधान ही नहीं रहा, स्मरण ही नहीं रहा किसी सखी का या सखी के साथ चलना चाहिए, इसका स्मरण ही नहीं रहा। एक दूसरे को बिना कुछ बताए श्री कृष्ण के पास चली आई। जवलोल कुंडला, उस समय जवेना बेगेना लोलानी चंचलानी कुंडलानी कुंडलोपलक्षितानी कंकण किंकड़िया दिन्यपि जासन तथा भूता सत्य। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब चली जोर से तो उनके कान के कुंडल झूम रहे, हिल रहे थे। चलने में केवल कान का कुंडल ही थोड़े हिलेगा, तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं उपलक्षण से कंकड़ चूड़ियां भी हिल रही थी, बज रहे थे, किंकड़ी और पायजेब इस सब आभूषण हार आदि हिल रहे थे। वेग से चली, कहां आई, जत्र सह परम मनोहर वेणु गीत गायक श्याम सुंदर कांत रमण आस्ते तत्रैव परम सुखमय स्थाने आजग्म। इस परम सुखमय स्थान पर जहां प्रियतम श्याम सुंदर हैं वे आ गए। एक बार श्रील सुखदेव गोस्वामी ये तो कह दिए कि आ गई, लेकिन अब वे चालू कर रहे कैसे चली वहां से, फिर से चालू कर रहे हैं उनके प्रस्थान प्रकार को बता रहे, कौन कहां थी, क्या कर रही थी, इसका वर्णन करे, क्या कर रही थी और कैसे उसने काम की पूर्णता पर ध्यान नहीं दिया और चल दी, जो कार्य करती थी वो छोड़ करके चल दी। यहां से फिर प्रारंभ करते, एक बार प्राप्ति की बात कह करके और फिर उनके प्रस्थान क्रम का वर्णन कर रहे हैं। दुहंत्यो भी यजुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकः पयोधिश्रित संयामम् अनुद्वाश्य परायुः। आत्मकर्म धर्माधिकम परित्यज्य चलिता नाम श्लोक प्रय्या विशेष प्रतिपत्तये पुनः प्रस्थानोद्यममेव वर्णयन् तत्रादौ कासांचित् स्वजाति कर्म परित्यागमा। तो एक बार यह कहकर के कृष्ण के पास आ गई, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी अब पुनः तीन श्लोक से हरे कृष्ण श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, आत्मकर्म लोक धर्मादिकम परित्यज्य चलिता नाम श्लोक त्रैया विशेष प्रतिपत्तये पुनः प्रस्थान उद्यमम एव वर्णयम तत्रादौ कासांचित स्वजाति कर्म परित्यागम। अपना कर्म धर्म और लोक, लोक का अर्थ है अपने लोग आदि का परित्याग करके वे चली, इस बात को तीन श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पुनः वर्णन कर रहे हैं। विशेष प्रतिपत्त है, जब एक बार कह दिए कि कृष्ण के पास आ गए तो कुछ विशेष बात कहने के लिए वो पुनः ये श्लोक चालू कर रहे हैं। तो दुहंतो भी यजु काश्चित दोहन हित्वा समुत्सुका उत्कट उत्कंठावत्य तद विलंबा सहना समर्था। सबके लिए समुत्सुका लगा रहे सुखदेव, सम उत्सुका, उत्सुक अर्थ होता है उत्कंठिता, और सम्यक उत्कंठिता कृष्ण के पास पहुंचने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए वो समुत्कंठित थी, अर्थात एक पल का भी विलंब उन्हें असह्य हो गया, यह अर्थ है। कृष्ण का वेणुनाद सुन करके एक क्षण का भी विलंब असहन हो गया, अथवा पहले से ही असहन था। काश्चित गोप्य, कोई कोई गोपियां दुहंत्य, भ्रातादि द्वारा गाह दोहयंत्य सत्य, अपने भाई आदि के साथ गाय दुहवा रही थी कोई कोई गोपी। यह है गोपियों का आत्मकर्म, यह जाति कर्म, अपना कर्म कर रही थी। केवल शरीर के स्वभाव या योग माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था थी कि उनका शरीर काम करता था, लेकिन मन तो बिल्कुल नहीं था, किसी भी काम में नहीं था, पर दुहवा रही थी। एक उनकी ड्यूटी थी घर में गाय दुहवाना, दुहे हुए दूध को इकट्ठा करना लाना, वो स्वयं नहीं दुह रही थी। अथवा एक अर्थ किया जाता है, कोई कोई गोपी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गोदोहन के लीला से इतना आकृष्ट थी कि वो स्वयं कृष्ण भावना में ही, मैं ही कृष्ण हूं, वो दुह रही थी। कोई कोई गोपी ऐसा भी, दोहयंत्य दुहंत्य भ्रातादि द्वारा भाई आदि के साथ गाय दुहवा रही थी, तो दोहन हित्वा वेणु गान सुनते ही, अपना नाम सुनते ही दोहनम दुग्धम वा हित्वा, वो दुहवाना क्रिया छोड़ दी और दुग्धम जो दुहा गया दूध था जिसको इकट्ठा कर रहे थे बर्तन में घर ले जाने के लिए, उसको भी बर्तन सहित हाथ से गिर गया, वो दूध भी गिर गया, दुहवाना छोड़ दिया और चल दी वहीं से। कैसे बाद में रोकेंगे कहां कहां, इसका वर्णन बाद सुखदेव गोस्वामी करेंगे। पहले कहते कोई कोई गोपी दुहवा रहे थे, गाय दुहवा रहे थे, तो गाय दुहवाना जैसे बछड़े को पकड़ना या गाय को पुचकारना पकड़ना और दूध को इकट्ठा करना, दुहवा रहे थे तो दुहाना छोड़ दी, क्रिया छोड़ दी और दूध भी छोड़, दोहनम दुग्धम वा हित्वा अभियु वेणु गीताभिमुखम ययु अभिमुख चली। जिधर से वेणु की ध्वनि आ रही थी, जिधर से वेणु गीत आ रहा था उधर चल, कोई रास्ता का अनुसंधान नहीं था, देह का भी अनुसंधान नहीं था, केवल इतना ही अनुसंधान था कि प्रियतम श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और इधर से आवाज आ रही है, बस चल दो। कोई पथ पर विचार नहीं हो रहा है, कैसे रास्ता जाएगा, कैसे चलना चाहिए, चल दी वेणु गीत के अभिमुख होकर के चल दी। अपरा और अन्य कोई कोई गोपियां पय दूध को, थाली पर रखे हुए दूध को, थाली में रखे हुए दूध को चूल्हा पर रख रही थी, चूल्हे पर गर्म करने के लिए। वो चूल्हा पर रख रहे थे गर्म, मतलब उसको गाढ़ा करने के लिए उबाल करके औंट करके गाढ़ा करने के लिए। कोई कोई गोपी दूध को औंट रही थी और दूध पूरे पक हो चुका था, पक हो चुका था, लेकिन अब उतारने की ही सोची थी, सोची नहीं था, उतारने वाली थी, पक हो गया था, लेकिन उसी समय बांसुरी की आवाज आई और आवाज आई तो दूध को बिना उतारे ही अनुद्वास्य जयु चली गई। अब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर हैं और दूध को छोड़ करके चूल्हे पर और चलती हुई गोपी को देख रहे हैं, ऐसे जयु शब्द का प्रयोग अभी जयु। अपराह पय स्थालिस्थम दुग्धम चुल्ल्यम अधिश्रित्य अध्यारोप्य क्वाथम अप्रतीक्ष माणा जयु। ये भी प्रतीक्षा नहीं कि दूध पक गया है या पक जाने पर इसको उतार देना चाहिए, बाद में इसका दही जमाया जाएगा या होगा, कुछ नहीं। वेणु गीत के बाद कुछ अनुसंधान नहीं रहा, वो चौदह संज्ञा अपरा संज्ञावम, कोई कोई गोपी संयाव पका रही थी। संयाव का अर्थ होता है लपसी, इसको हलवा नहीं कहेंगे, गेहूं का दलिया, दलिया का, लेकिन दलिया मीठा दलिया, गुड़ और काफी घी उसमें, संयाव कहते हैं। गोधुम कणानम लिखते हैं सीता सनातन गोस्वामी, गोधुम, गोधुम को ही गेहूं कहते हैं, गोधुम कण अन्नम, इसको घी में और दूध में पका रहे थे। तो अनुद्वास्य उसको बिना उतारे ही, अनुतार्ज उस लपसी को बिना उतारे ही जय चल। यह है आत्मकर्म, जाति कर्म का त्याग, स्वाभाविक कर्म था। और ऐसी बात नहीं थी प्रारंभ नहीं की होती, मान लीजिए प्रारंभ नहीं की होती चल देती तो कोई बात नहीं, प्रारंभ कर चुकी है, बना चुकी है, अब थोड़ा सा ही रुक करके जाना चाहिए था, एक प्रकार से लोक में ही अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, अगर जाना भी है, कृष्ण से प्रेम है, प्रीति है, ठीक है, लेकिन जाना ही है तो उतार करके जाए, क्योंकि बाद में बच्चा खाएगा, पति खाएंगे या स्वजन बंधु कोई खाएंगे, पर बिना उतारे ही चलो। एक बार एक कथाकार कह रहे थे, बेचारा वो लपसी चूल कड़ाही में ही जल गया, अरे ये इसको क्यों कर, वो जले या मरे कुछ भी हो तो दूध को नहीं उतारिए, उसको जलता हुआ छोड़ दी, और संयाव लपसी नहीं उतारी। यह शेष अर्ध के साथ ही अन्वय सबका होगा, किसी को नहीं उतारी। परिवेश्यंत स्तब्धित्वा कोई कोई गोपी, कोई कोई गोपियां अपने घर में भृत्यों को, सेवकों को और अपने स्वजनों को, बंधुओं को भोजन परस रही थी, परिवेशन कर रही थी और बैठकर खा रहे थे, अपने आप समझ लेना चाहिए। तो कोई कोई अपने बंधुओं को, बंधु से तात्पर्य है ससुर या पति या भाई और भी जो संबंध में रख लगते हैं, उनको बंधु कहते हैं, बंधुओं को भोजन कर रहे थे। एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है स्त्री का कि वो उनको भोजन करा रहे, वो करा रहे थे, उसके अनुसार परोस रहे थे। परिवेश्यंत बंधुन भृत्यादिश्च प्रति अन्नादिकम संविभज्य अर्पयंत्य हस्त, अर्पित कर रहे थे, दे रहे थे। तत् लेकिन तत् परिवेशनम परित्यज्य हित्वा जय हुई थी पूर्वेण अन्वय, ये परोसना छोड़ करके चली गई। जिम ही बांसुरी की आवाज कानों में आई तेम ही छोड़ दी। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परोसने वाले पात्र को रख करके चली, वो गिर गया हाथ से, उसका तो ध्यान ही नहीं था कि हमारे हाथ से बर्तन गिर रहा है, या कलछुल गिर रही है, चम्मच गिर रहा है, सो रहा है, या वे क्या सोचेंगे, पति क्या सोचेंगे, आधा पेट खाए हैं और वे क्रोध करेंगे, इसका अनुसंधान ही रह रहा, बस परोसना छोड़ करके चलेंगे। परिवेश्यंत स्तब्धित्व, इसको लोक का त्याग कहते हैं, स्वजनों का त्याग। पाई अंत शिशुन पाया, और कोई कोई गोपियां शिशुओं को, बच्चों को दूध पिला रही थी। शिशु शब्द दिया गया है, श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी बहुत सावधान है, कोई भी गोपी केवल विवाह मात्र हुआ था, किसी कोई कोई संतानवती नहीं थी, सब तो किशोरी थे, वो तो भगवान की प्रियाएं हैं, केवल भाव है परकिया का, विवाह हो गया है दूसरे से, वो भी सब भगवान की ही लीला की विशेषता है, परंतु किसी से किसी को कोई संतान नहीं था, इसलिए पुत्रन न कहकर के शिशु कह रहे हैं, अपने बहन के पुत्र को या और किसी संबंधिनी स्त्री के पुत्र को, शिशु को कोई कोई गोपी गोदुग्ध पिला रही थी, ये अर्थ, कोई कोई गोपियां दूध पिला रही थी बच्चों को, पर वो पिलाना और बच्चा सबको छोड़ करके चल दी, इस प्रकार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इस स्नेह का त्याग करना, इस ममता का, बच्चे दूध पी रहे हैं और उनको भी छोड़ दिया, इस पर तो ध्यान ही नहीं गया कि ये बहुत ऊंचा काम है, बच्चों की सेवा करनी है, ये करना ही नहीं, तो पति आदि को जो भोजन परोस रही थी वो छोड़ करके चली, दूध पिला रहे थे बच्चों को उसको छोड़ करके चली। सुसंत पति काश्चित, और कोई कोई गोपियां अपने पतियों की सेवा कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, बहुत गोपियां हैं, इसलिए उनके उनके अलग अलग पति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। कोई कोई गोपियां अपने पतियों की सेवा कर रही थी, क्या सेवा कर रही थी, उनके स्नान आदि के लिए पानी गर्म कर रही थी, सेवा का यह अर्थ है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कोई शारीरिक सेवा, चरण संवाहन आदि में, तो पानी गर्म कर रही थी, सिर्फ सनातन गोस्वामी मुख्य अर्थ ही कर रहे थे, और उनके भोजन आदि के लिए जो जुटाना, सुश्रूषंत है, सेवा कर रही थी, सेवा कर रही थी, उसको तुरंत छोड़ दिया, पतियों की सेवा पर भी ध्यान नहीं गया। अस्नंत्यो, और किस प्रकार से देह की भी अपेक्षा का त्याग हो गया, कोई कोई गोपियां भोजन कर रही थी, भोजन कर रही थी, तो भोजन का त्याग कर दिया, देह पर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, देह कैसे रहेगा, या भूख का अनुसंधान है, इतना बाकी रह गया है, ये छूट रहा है, छोड़ दिया, और भोजन त्याग करके चले, इसका अर्थ ये है कि भोजन के त्याग के बाद यह भी ध्यान नहीं था कि हाथ धो करके चलना चाहिए, ये जूठे मुंह है, मुख में लगा हुआ है जूठा, वैसे चल गए, हाथ भी नहीं धोए, कोई कोई गोपियां श्रृंगार कर रही थी, आगे बताया जा रहा है, लिंपन्त्य प्रमृजन्तन्य अंजन्त्य काश्च लोचने व्यस्तस्त वस्त्र भरण काश्चित कृष्णान्ति कंजय। कोई कोई गोपियां लिंपन्त्य अनुलेपन कर रही थी, अंगराग लगा रही थी अपने शरीर में चंदन पंख आदि से, किसके लिए लगा रही थी, प्रियतम श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए, वे चाहते थे कि हमेशा गोपियां सज धज करके रहे, वे इससे बहुत खुश होते थे, इसीलिए अपने श्रीअंग में श्री गोपीजन चंदन आदि लगा रही थी, लेप कर रही थी, अंजनते काष्ठ लोचन, कोई कोई अपने आंख में अंजन कर रही थी, अंजन लगा रही थी, तो जो लेप कर रहे थे, जितना लेप की है, अंगराग लगाई है, बस उसी समय छोड़ करके चल दी, बेलू गीत सुनने पर उसी समय त्याग करके चल गए, और कोई कोई अंजनते आकाश चल रहे चले, कोई कोई आंखों में अंजन दे रही थी, एक आंख में ही अंजन दी है, और थोड़ा सा चालू किया और बेड़ू गीत को सुनते ही वो अंजन का डिबिया सब फिका गया, सब कुछ ब्रश ब्रश गायब हुआ, छोड़ करके चल गया। कोई पूर्ण कार्य की पूर्णता पर कोई अनुसंधान नहीं। इसका मतलब है कि अपने शरीर के श्रृंगार का ध्यान नहीं था उनको, उसमें ध्यान नहीं था पहले से ही। कृष्ण गृहित मानस है और वेणु गीत पर अपना आह्वान सुनने पर तो फिर कहां से अनुसंधान रहेगा कि आंखों में अंजन करना है इसको पूरा कर ले, दूसरी आंख में भी कर ले, तब से हम सुंदर के पास चले नहीं। इतना कहां वहां अनुसंधान। ये है वेणु गीत का, बांसुरी के गीत का महामोहन प्रभाव। सब कुछ सुधि विश्रा दिया, लेहत विवेक हो गई, अंजनते पास चलो चले। तो कोई अंगराग लगा रही थी, उबटल लगा रही थी, चंदन आदि लगा रही थी शरीर में, उसको छोड़ करके चल दी। कोई अंजन लगा रही थी वो छोड़कर चल दी। व्यत्यस्त वस्त्र भर और कुछ गोपियां उस समय वस्त्र पहन रही थी और कोई कोई आभूषण धारण कर रही थी। जैसे वेणु गीत हुआ, जैसे पहनी थी वैसे ही चल दी। यद्यपि भगवान की स्वरूप शक्ति योग माया की व्यवस्था थी कि गोपियों को ठीक से वस्त्र आदि पहना देती, क्योंकि स्वयं ध्यान नहीं था शरीर का, लेकिन भगवान की लीला शक्ति से सब व्यवस्था थी। पर व्यत्यस्त वस्त्र भरना, वस्त्र और गहना व्यत्यस्त पहन करके ही कृष्ण अंतिकम गई, कृष्ण के पास आई। केवल कृष्ण के पास जाना है, प्रियतम से मिलना है, यही अनुसंधान का विषय है, स्मृति का विषय केवल यही है। वस्त्र कैसे पहनी हूं, आभूषण कैसे पहनी हूं, इसका ध्यान नहीं है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, स्वरूपतः स्थानतश्च विपर्ययम्। स्वरूपतः कोई कोई स्वरूप से ही उल्टा पलटा पहनी है या आभूषण धारण किए। स्वरूप का अर्थ है कि जो गहना वास्तव में गहना नहीं है उसको पहन ले, गहने के स्थान पर वस्त्र पहन ले, वस्त्र के स्थान पर गहने जैसा पहन ले। और स्थानतः कान में पहनने वाले कुंडल को उंगली में पहन ले, ध्यान नहीं आया जैसे तैसे। पहले से ही ध्यान नहीं था इस पर, तो केवल शरीर काम कर रहा था। वेणु गीत के बाद तो कुछ भी अनुसंधान नहीं रहा। पैर में पहनने वाला गहना नूपुर गले में टांग करके चल, उस शरीर के स्वभाव जल्दी जल्दी में अनुसंधान से नहीं है तो धारण कर लेना है। केवल शरीर के स्वभाव से ही शरीर का एक अंग दूसरे शरीर पर गहना लगा रहा है, चाहे कुछ भी, या अंजन आदि का व्यतिरेक व्यत्यास। इस तरह से उत्पटांग वस्त्र और गहना पहने हुए गोपियां कृष्ण के पास चली गई। तो इस पर प्रश्न होता है, अपने स्वजनों ने रोका नहीं उनको? श्री सुखदेव गोस्वामी यहां यह बताना चाहते हैं कि गोपियों का अद्भुत अनुराग भगवान के प्रति है, अद्भुत आवेश है कि स्वजनों के रोकने पर भी वे नहीं रुकी। इन कर्मों को छोड़ करके चली, जेम ही चली तेम ही में रोकने लगे। कौन कौन रोक रहे थे? तावार्ज मारा है, पितृ भी, भ्रातृ भी, पति भी, पितृ भी, भ्रातृ बंधु भी। सबसे पहले पति रोक रहे थे। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक तो संधान नहीं था, बाह्य ध्यान नहीं था गोपीजनों का, इस पर से बलात् बाह्य अनुसंधान कराया जा रहा था, फिर भी वे नहीं रुके। जिन ही घर से निकली, मान लीजिए दुहुआना छोड़ करके चली, तो भाई पकड़ेगा या पति पकड़ेगा, सबसे पहले पति का नाम लिया गया, क्योंकि पति पत्नी के शुभ अशुभ कर्म का भागी होता है, समभाव रहता है दोनों में और ममता भी अधिक रहती है। यद्यपि सबको पता है गोपियों का इस तरह से भागना, ये नहीं समझना चाहिए कोई ये समझा कि कोई भूत लग गया या मिर्गी रोग हो गया भागने लगी। सबको पता है कि ये भाग रही है केवल श्याम सुंदर के कारण, लेकिन फिर भी वो भी अवैध है, श्याम सुंदर एक परकीय पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, पर पुरुष हैं, और ये दूसरे की पत्नी है। इस तरह से चल देना, काम की पूर्णता पर भी ध्यान न देना, देह के श्रृंगार पर, देह के स्मृति पर कोई ध्यान नहीं है, चल दे तो जेल ही चली तेम ही वे पकड़ लिए। तावार्ज माना, निषिद्ध माना, गोपियों को रोका जा रहा है, और पति रोक रहे हैं, पिता रोक रहे हैं, भाई रोक रहे हैं, और अन्य बंधु अपने संबंधी जो हैं सब रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? हस्त धारणा दिना, ये धर्म धर्म भय प्रदर्शन दिना, धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रही हो, जबरदस्ती बांह पकड़ लिए, हस्त धारणा दिना, हाथ पकड़ लिए, तुम नहीं जा सकती हो, तुम नहीं जा सकती, उसको तो ध्यान ही नहीं है। केवल ध्यान श्याम सुंदर का है, इस पर ध्यान नहीं कि तुम मेरे पति हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा काम है, ये है वो, इसका तो कोई अनुसंधान ही नहीं। हाथ धारण किए, और एक एक आदमी नहीं, इसलिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। कई लोग रोक रहे हैं, दूसरे का भी कोई पति है, वो अपनी पत्नी को और दूसरे की स्त्री को भी, जो मान लीजिए भाई लगे संबंध में या और दूसरे तरह से लगे, वो रोक रहा है। तो पति भी, पति जानता है पत्नी के शुभ अशुभ का मैं भागीदार होता हूं, और पत्नी अगर रात में कहीं जाती है, अगर ये श्याम सुंदर से मिलती है तो लोक में मेरी बहुत बदनामी होगी, ये ठीक नहीं है। अब तक जो गोपियां कर रही थी तो लोक में कुछ दबा हुआ था, लेकिन आज जो चल दी, सब कुछ छोड़ करके, देह की स्मृति भी छोड़ करके, तो कौन इसको सह सकता था, तो रोकने लगे पति। तो पति इस प्रकार की भावना से, मेरी पत्नी है और इस तरह से इसका जाना पर पुरुष के पास ठीक नहीं है, तो हाथ पकड़ करके और धर्म का भय दे करके रोक रहे हैं, लेकिन नहीं रुकी। फिर पितृ भी, पितृ भी का अर्थ है माता पिता अथवा सास ससुर या और भी जो संबंध में बड़े थे, वे सब लोग रोक रहे हैं, पितृ भी। ये क्यों रोक रहे हैं? केवलम कन्या वैगुण्येन दोषस्य स्पर्शात् स्नेहाच्च, घर की कन्या है, कन्या यदि अपने पति के साथ नहीं रह रही है और ये दूसरे के यहां चले जाते हैं, कृष्ण के पास जा रही है, तो इसमें दोष का स्पर्श हो रहा है, इसका नाम बिगड़ेगा, पूरे वंश का नाम डूबेगा। इस भय से और स्नेह से कि बेटी है, रात के समय कहां जा रही है, अपने पति के साथ रहना चाहिए, तो पिता भी सब बांह पकड़ करके और किसी तरह समझा करके रोक रहे हैं, और भ्रातृ भी। और इसके बाद दुष्कृति के भय से, मेरी बहन है, इसका दुर्जस फैलेगा संसार में कि कुल्टा हो गई, ये अपने पति को त्याग दिए, पर पुरुष से संबंध रखती है, स्नेह करती है, ये दुष्कृति होगी हमारे परिवार में, और स्नेह विशेष भी है भाई का, इसलिए वे लोग रोक रहे थे। और बंधु भी, बंधु तपस्त कुल दोष संकया, और अपने बंधु संबंधी कुल दोष संकया, कि सब लोग हमारे खानदान को, कुल को दोष देंगे ऐसे कार्य से, इसलिए बंधु लोग भी स्नेह से रोक रहे थे, बलात् रोक रहे थे, हाथ पकड़ करके रोक रहे थे, लेकिन ता वार्ज मारा, इन सबके द्वारा रोकने पर भी वे न रुकी। बाह्य अनुसंधान तो हुआ, बाह्य अनुसंधान होने पर भी नहीं रुकी। ये ध्यान आया कि पति रोक रहा है, पिता रोक रहा है, पहले तो संधान नहीं था, लेकिन बलात्कारित बाह्य अनुसंधान, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते बलात् बाह्य अनुसंधान कराया गया, पर बाह्य अनुसंधान होने के बाद भी ये नहीं रुकी, नहीं रुकी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे किसी विशाल नदी में बाढ़ आई हो, पहाड़ी नदी, उसमें वेग से जल की धारा चल रही हो और उसमें कोई नौका पड़ गई है बीच धारा में, बहुत वेग से वो नौका जा रही है, उस पर कुछ लोग चढ़े हुए जा रहे हैं बहुत वेग से, तो उसको कोई तट पर खड़ा होकर के तिष्ठ तिष्ठ ये कहेगा तो क्या नौका रुक सकती है? तो किसी के कहने से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो नाव रुकेगी क्या? वो तो बहुत वेग से चलेगी, किसी के कहने से नहीं रुकेगी। तो ये तो है धर्म भय दिखाना, धर्म की बात कहना या कुल दोष आदि की बात कहना, ऐसे ठीक नहीं है। तुम्हारा ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, लोक में बदनामी होगी, दुर्जस होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस तरह से नौका के रोकने का प्रयास कोई तट पर रहकर कर रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। नौका कभी नहीं रुक सकती है, जो ऊंचे स्थान से जल के धारा के साथ बह रही है, यदि कोई उसे पकड़ने की चेष्टा करे पकड़ने की, तो वह भी उसी के साथ चला जाएगा, वो नहीं रुक सकता है। तो इस तरह से गोपियां चली श्री कृष्ण के पास, क्यों? गोविंदा पहरतात्मान, एक तरफ गोविंद खींच रहे थे और अनंत शक्ति से संपन्न समस्त मोहन शक्तियों से परिपूर्ण भगवान एक तरफ खींच रहे थे। गोविंदा पहरतात्मान गोविंदेन गोकुलेन्द्र अथवा गाह इंद्रियाणी तेसा ईश्वरत्व न विंदती गोविंद, जो इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश हैं, वे इंद्रियों को खींच रहे थे, वे मन को खींचे थे। तो ये सब लोग पकड़ करके उसको कैसे रोक पाएंगे? एक तरफ गोविंद खींच रहे हैं, कृष्ण खींच रहे हैं, बांसुरी के गीत द्वारा वे खींच रहे हैं, तो क्या शक्ति है कि दुनिया रोक ले उनको? मैं तो सांवरिया पर जाऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया, सारी दुनिया मिलकर के रोके, मैं रुकने वाली नहीं हूं। सब लोग रोक रहे थे, बांह पकड़ पकड़ कर, एक एक गोपी के कई लोग बांह पकड़ करके रोक रहे थे, लेकिन देखिए बल, गोविंद का बल, वो नहीं रुकी, हाथ छुड़ा करके छोड़ रहे, छोड़, मैं नहीं जी सकती हूं, मैं नहीं रह सकती हूं, हम बस इतने दिन के लिए ही तुम्हारे साथ संबंध था। ये ऐसे तो ये कहने का भी संधान उनको नहीं है, वो तो उधर का आकर्षण इतना ज्यादा है कि वो रोक कर वो चल ही दी। उन अबलाओं के हाथ को बलवान पुरुषों का बाह नहीं पकड़ सका, यह है कृष्ण प्रेम की शक्ति। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते गोविंद अपहृत आत्मा, आत्मा का अर्थ जीव भी होता है और आत्मा का चित्त भी होता है, तो उनके चित्त को गोविंद खींचे थे और आत्मा को ही जो खींच रहा है, इस शरीर में आत्मा ही मुख्य है, जब आत्मा को ही अपहृत कर लिए हैं तो ये देह कैसे रहेगा और कौन रोक पाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो तो दुनिया मिल करके उसको रोक सकती है आत्मा को? वहां जो आत्मा को भगवान खींच रहे हैं, चित्त को खींच रहे हैं, एक तरफ कृष्ण की शक्ति है खींचने की अपने तरफ, और एक तरफ दुनिया के सारे लोग अपने तरफ खींच रहे हैं, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे तुम कुल वधू हो बेटी, तुम बड़े ऊंचे वंश में जन्मी हो, मैं तुम्हारे पिता हूं, ये हूं वो, कुछ भी नहीं रोक पाया क्योंकि गोविंद खींच रहे थे। अतः गोपों का, पति का, भाई का, बंधुओं का और पिता आदि का खींचना, उन बंधुओं का, भाइयों का, पिताओं का, पतियों का कोई बल काम नहीं किया, तो सबको छोड़ करके चली गई कृष्ण के पास। ये है गोपियों का त्याग, पतियों की सेवा छोड़ करके चली, ये है धर्म का त्याग, और बंधु बांधवों को भोजन करा रही थी, ये था लोक का त्याग, और बच्चों को दूध पिला रही थी, ये था स्नेह का त्याग। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, सब कुछ छोड़कर के गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है, और श्याम सुंदर इसी बात का अप्रिसिएशन कर रहे हैं भागवत में। यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट तदव प्रतियात साधु, भगवान ने कहा न पा रहे हम निर्वध साधु को, हे गोपीजनों, हे प्रियाओं, मैं देवताओं के आयु तक भी निरंतर तुम्हारे द्वारा किए हुए सेवा का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता हूं, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा, क्यों तुमने दुर्जर गेह श्रृंखला को और आर्ज पथ को छोड़कर के मेरे साथ प्रेम किया। तो ये है गोपीजनों का त्याग, जिसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर कर रहे हैं। इस तरह से गोपियों ने छोड़ा था, कुछ भी उनके सामने नहीं था, केवल कृष्ण थे और कृष्ण का वेणु गीत था, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए भगवान उनके प्रेम के ऋणी हैं वास्तव में, और यही कारण है कि गोपियां कृष्ण भक्तों में सिरमौर हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उद्धव जी चरणों की धूली में लौट रहे हैं, लता पता बनना चाहते हैं, ब्रह्मा जी घास बनना चाहते हैं वृंदावन में। तो इन लोगों ने समझा है गोपीजनों की महिमा को, और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सावधानी से इस लीला को पढ़ने की सूचना दिया है। कहते हैं बहुत ऊंची लीला है, बहुत ऊंची लीला है, बहुत ऊंची लीला है। तो इस प्रकार यहां पर गोपियों के प्रस्थान उद्यम का वर्णन किया गया, गोपियां कैसे कृष्ण के पास चली हैं। वहां पहुंचने के बाद श्याम सुंदर उनसे बातें करते हैं अद्भुत तरह से, बुलाए हैं वही और पूर्ण प्रसन्न है, प्रसन्न ही नहीं है, उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई, वे गोपीजनों के सौंदर्य आदि से पूर्ण आकृष्ट थे और वे उनके साथ विहार करना चाहते थे। कृष्ण का मनोरथ सफल हुआ है, प्रसन्न है, लेकिन बिल्कुल उत्पटांग भाषा में बोलते हैं कि आप घर लौट जाओ, पतियों की सेवा करो, बच्चों को दूध पिलाओ, गऊओं को दूहो, क्या इधर आ गई, ठीक नहीं है, और उस पर भी मैं पर पुरुष हूं। और हरिश्री जी इस पर अर्थ किए हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं पर पुरुष हूं, तो पर पुरुष का मतलब परम पुरुष, तो ठीक ही बोल रहे हैं ये सुप्रीम पर्सन है, पर पुरुष परम पुरुष। इस प्रकार गोपियों का त्याग अद्भुत है, हम भक्तों के ये अध्ययन मनन का विषय है, और इस मनुष्य शरीर में इन सब लीलाओं का श्रवण करना, वर्णन करना, चिंतन करना, ये बहुत बड़ा लाभ है। जो भी हम लोगों को श्री राधा रानी ने वृंदावन धाम दिया है, तो धाम में इसकी चर्चा तो और स्वाभाविक है, वो भले अपने अधिकार की चीज न हो लेकिन लौल्य तो होगा ही। पहला तो इसको प्राप्त करने का यही उपाय है कि इसे पढ़ा जाए, सुना जाए, पहला ये हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं। तो हमने तो ये 8 श्लोक तो पहले से ही सोचा था और वहां तक पूरा किया, तो समय हो गया। बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत एकाग्रता से सावधानी से इसको सुने, प्रेम से। हरे कृष्ण।